ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபிஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜவிஹாரி ஜய ஜய ராதவ ஜவிஹாரி ஜய ஜனவல்லபிரிவரதாரி ஜய யசோதனந்தன பிரஜ ஜனரஞ்சன யசோதனந்தன மிருத ஜன்னரஞ்சன யமோநதீராவனசாரி யமுநதீராவனசாரி Ram 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Giridhari Radha, Giridhari Radha, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Nitai Goranitai Goranitai Jaya Goranitai 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Shiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nasta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishiki Srimad Bhagavatam Skanda 10 Adhyay 1 Shlok Adhyay 2 Shlok Sankhya 2 Anyecha Asura Bhupalai Vana Homa Adibihi Yuta Yadunam Kadanam Chakre Bali Magadha Samsaya Anyaischa Surabhupalai Anyaischa Surabhupalai Vana Bhaumadi Viryutaha Vana Bhaumadi Viryutaha Madhunam Kadunam Chakre Magadha Samsayaha Anyaisya மானபூமாதிபிர்யுதனம் சக்ரே வலிமாகதசம்சய சுரபூபாலே पृथ्वी पर असुर राजाओं द्वारा बाण बाणासुर भौम भौमासुर आदि भी आदि के द्वारा युतः सहायता प्राप्त करके यदुनाम यदुवंश के राजाओं का सदनम उत्तीर्ण चक्र किया बली अत्यंत शक्तिशाली मगध संशय मगध के राजा जरासंध के संहरण में संरक्षण में अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा मगध राजा जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस यदुवंशी राजाओं को पीड़ित करते बंद करने लगा। इनमें उसे प्रलंब भक्तानूर भासुर मुष्टिक हरिष्ट द्विविध पूतना केशी धेनुका बाणासुर नरकासुर तथा पृथ्वी के अन्य सब असुरों राजा असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। तात्पर्य इस श्लोक से भगवद्गीता से भगवद गीता में आए भगवान के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है। इदाहि धर्मस्य गाने भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य ददात्मानं सृजाम्यहम् चरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का नाश होता है और धर्म की प्रधानता होती है हो जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं पुण्यात्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने एवं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे भगवान के उद्देश्य है कि वे हर एक को भगवत धाम वापस लेने का अवसर प्रदान करें। किंतु दुर्भाग्यवश राजा तथा राजनेता भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते हैं। अतः सब कुछ ठीक करने के लिए भगवान स्वयं या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है, गर्भम संचार्य रोहिण्या देवक्या योगमाया देवक्या योगमायाया तस्य कुक्षीं कतः कृष्णो द्वितीयो विवृद्धो स्तुति स्तुतः। योगमाया की शक्ति के शक्ति से बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए। यद्यपि यदुभिः सा व्यवरुध्यता यदुवंशी सारे राजा प्राप्त थे, किंतु शाल्व जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का ससुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था। अतः कंस ने यदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। ये असुर देवताओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान से सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे। ओम ज्ञानदस्य ज्ञानांजनशलाप चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्महिष्टमांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसुखं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शिवशाकान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्त नमोस्तुते कृष्णकान्न गौराङ्गिरा हे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दसवां स्कंद का दूसरा अध्याय का शुरुआत हो रहा है। पहले अध्याय में हमने ये देखा किस प्रकार नारद मुनि आके कंस को कहा कि देवता लोग यदु वंश में जन्म लिए हैं, वृश्चिक वंश में भी जन्म लिए हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये जो देवकी के जो पुत्र हैं वो आठवां भी पहला हो सकता है, पहला भी आठवां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कंस ने बात को सुना तो तुरंत उन्होंने क्या किया, देवकी वसुदेव को बंदी बनाया और उन्होंने सारे छह के छह पुत्रों को मार दिया। तो ये वर्णन हमको पिछले अध्याय में प्राप्त होता है। अभी इस अध्याय में कंस को नारद जी ने कहा था कि यदुवंश में जितने भी लोग जन्म लिए हैं वो सब कौन है, देवता है। तो जैसे कंस को ये बात मालूम पड़ा कि यदुवंश में जन्म लिए सब लोग देवता है, तो उन देवताओं को सताने के लिए कंस ने क्या किया, एक योजना बनाया। सबसे पहला योजना उन्होंने ये बनाया कि उन्होंने जरासंध का शरण लिया। इसलिए इस श्लोक में हमको एक शब्द प्राप्त होता है, मागध संश्रय। तो आश्रय लेने की क्या जरूरत है उनको, कंस को तो स्वयं शक्तिमान है। भले ही कंस स्वयं शक्तिमान है लेकिन उनको हमेशा डर था, देवताओं से डर था। डर तो हम उनको निकाल नहीं सकते, कंस जो है डर का प्रतीक है। जैसे असुर एक प्रतीक होता है, भय का प्रतीक कंस है। तो स्वयं भयभीत रहता है और दूसरों को भय प्रदान करता है, ये कंस का स्वभाव है। तो कंस को मालूम था कि मैं मगध राजा के ऊपर विजय प्राप्त करके मैं सबके ऊपर सबका राजा हूं, लेकिन फिर भी कंस ने क्या किया, मगध संशय, मगध राजा का आश्रय ग्रहण किया। जैसे दुर्योधन स्वयं राजा थे, लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध का प्रारंभ में ने क्या किया, सबसे पहला वो द्रोणाचार्य के पास गए। वैसे द्रोणाचार्य एक सेनापति होने के नाते दुर्योधन द्रोणाचार्य को बुला कर, हे द्रोणाचार्य इधर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य को बुलाए नहीं। तो भले ही वो कितने भी प्रकार के वो पॉलिटिक्स भी जानता क्यों ना हो, क्योंकि भी परिस्थिति जो है, दृष्ट्वाद पांडवान एकम यूडम दुर्योधन स्थता आचार्य उपसंगम्य राजा वचन प्रवि। दुर्योधन को राजा करके संबोधित किया गया उस श्लोक में, भगवद गीता का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक में। क्यों, क्योंकि बुद्धिमान थेरा दुर्योधन, उनको मालूम था अगर मैं द्रोणाचार्य के पास जाऊंगा तो द्रोणाचार्य और शक्तिशाली हो जाए और उत्साह में आ जाएगा। तो उनको उत्साहने के लिए दुर्योधन गया। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कितना भी अपना पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स करे द्रोणाचार्य, ये इनका पॉलिटिकल वेनियर यानी पॉलिटिक्स के जो कार्य हैं, उनका पॉलिटिकल जो बुद्धि है, उनके हृदय में छुपा हुआ डर को वो छुपा नहीं सकता। उनके हृदय में जो डर है उसको छुपा नहीं सकता। उसी प्रकार संत भले कितने भी शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, वो बहुत डरा हुआ था। तो डर के मारे उन्होंने क्या किया, इस बच्चों को मार दिया, जस्ट किल्ड सिक्स चिल्ड्रन। खाली नारद जी ने खाली इतना बोल के गए, बस कोई भी बच्चा आठवां गर्भ हो सकता है। और इतना ही नहीं, कंस नारद जी ने कहा था कि यदुवंश जितने भी लोग हैं वो सब देवता है। अभी कंस को डर लगने लगा, देवता मेरे दुश्मन होते हैं, कोई भी देवता जो है वो सब मुझे मार सकते हैं। इसलिए मथुरा में मथुरा को राज्य करते हुए कंस ने क्या किया, वो सोचने लगा कि इस मथुरा मंडल में कोई भी यदुवंशी रहना नहीं चाहिए। हो सकता है कि मैं मथुरा के रास्ते में कभी जाता रहूं, कोई यदुवंशी आके मुझे प्रणाम करने के लिए आए, कोई आदर करने के लिए आए, कोई मार के चले जाए। तो उन सबको तो मार नहीं सकता हूं, लेकिन कम से कम त्रास तो दे सकता हूं और कुछ लोगों को मार भी दूंगा, लेकिन अकेले मैं करूं ये ठीक नहीं है। क्योंकि कंस ने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं और इस जगह का राजा हूं, और प्रजा को स्वयं अपने हाथों से मारना ठीक नहीं है, मैं किसी और को लगाऊंगा, वो सब उनको मारते रहेंगे, त्रास करते जाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग भाग जाएंगे, तो मैं गुंडों को रखूंगा, है कि नहीं? जैसे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति रहता है, अगर कोई उनके दुश्मन है, उन दुश्मन को डायरेक्टली जाकर उनको नहीं मारेगा, क्योंकि वो पोस्ट में है ना। हाँ, ये कोई MLA MP है, कोई पोस्ट के समझ लीजिए मिनिस्टर है, वो सीधा ही मारने से तो पोस्ट टकराए, लोग सोचेंगे कैसा राजा है। तो क्या करता है व्यक्ति, वो कुछ गुंडों को रखता है। तो आप जाके कुछ उनको मारो, कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उनको उत्साह दूंगा, आपको इनाम भी दूंगा। तो इसी प्रकार कंस ने क्या किया, मगध राजा का संशय लेकर आश्रय लेते हुए उन्होंने सारे यदुवंशियों को त्रास किया, सारे यदुवंशियों को, यदु कुल के वासियों को बहुत दुख पहुंचाया, कुछ लोगों को मार भी दिया। और उन लोगों के लिए किन किन अस्त्रों को उन्होंने युक्त किया, हुम ऑल एंगेज, उनका पूरा लिस्ट है, उसी लिस्ट से शुरू होता है। अभी देखिए दूसरा अध्याय का शुरुआत होता है असुरों का नाम संकीर्तन के द्वारा। तो सबसे पहला है सामने कहा पहला श्लोक में, ये दूसरा श्लोक प्रलंब का चाणूर, प्रलंब प्रलंबासुर बकासुर चाणूर। ये प्रलंबासुर आप सब जानते हो कैसे प्रलंब है, और बका बकासुर बड़े पक्षी के रूप में आया था, चाणूर चाणूर भी बड़े शक्तिशाली राक्षस था, तनावर हवा के रूप में आया था, तनावर महाशनि महाशनि, ये जो महाशनि है वो अगासुर था, सबको खाने वाला था अगासुर। तो अगासुर तनावर्त और अगासुर मुष्टिकर अरिष्टा, अरिष्टासुर एक बड़ा बैल के रूप में आया था, द्विविध वो तो एक बंदर के रूप में आया था, पूतना एक बालघातिनी केसरी थी, केसी एक राक्षस जो है वो घोड़े के रूप में आया था, धेनुकासुर जो है गधे के रूप में आया था, और अन्य चासुर भूपालय थी, अन्य चासुर भूपालय अनेकों अनेकों राजा थे कंस के, वो सब अलग अलग देश को पालन कर रहे थे, सब लोग आ गए थे मथुरा में। अस्तित्व में कुछ लोग कहते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं कंस ने क्या किया था, सारे राजाओं को बुला दिया था मथुरा में रहो, क्योंकि कंस को इतना डर लगने लगा, इतना डर लगने लगा कि जिन राजाओं के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया था उन्हीं राजाओं का सहायता लेने लगा। और इतना हद तक ऐसा था कि अगर मान लीजिए कोई यदुवंशी कुछ ज्यादा विरोध करता है, उधर जाके ये मगध राजा जो हैं जरासंध इत्यादि लोग जाके उनको खत्म ही नहीं करते, मार भी देते थे, और पूरा गुंडागर्दी का राज चलता था, कोई नीति कोई न्याय कुछ नहीं है। जैसे आजकल होता है कि प्राय जो पॉलिटिशियंस होते हैं सब गुंडे होते हैं, तो उसी प्रकार कंस ने क्या किया था, गुंडा राज, राम राज नहीं था, गुंडों का राज था, गुंडा राज चला दिया था, कोई नीति कानून कुछ नहीं है। तो सरकार के रूप में कंस राजा के रूप में बैठे हैं, आप अत्याचार करते जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप चिंता मत करो, उल्टा मैं आपको इनाम दूंगा। तो इन सब राजा लोग मथुरा में आ गए थे। अभी प्रश्न उत्पन्न होता है कि इधर सुखदेव गोस्वामी इन असुरों का नाम उच्चारण कर रहे हैं, असुरों का नाम उच्चारण करने से क्या फायदा। जब प्रभुपाद जी पहले अध्याय भगवद्गीता के पहले अध्याय के कुछ श्लोकों के ऊपर व्याख्या करते हुए उधर कहते हैं, भगवद्गीता इतना महान ग्रंथ है, इसके अंदर ये दुर्योधन के पक्ष के सेनाओं का वर्णन कैसे चल रहा है। दुर्योधन कहता है कि मेरे पक्ष में कौन कौन है मालूम, मेरे पक्ष में कर्ण है, द्रुपदश्च कर्णश्च समतंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च, ये विकर्ण इत्यादि अनेकों अनेकों राजाओं का नाम उच्चारण करता है दुर्योधन। तो उधर उस श्लोक में की व्याख्या में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन लोगों का नाम एक श्लोक में रख के क्यों भगवद्गीता की जो विशेषता उसको कम किया जा रहा है। तो असुरों का, दुष्टों का, राजाओं का नाम लेने से क्या मतलब है। तब उस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि युक्त वैराग्य निर्बंधन कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते प्राप्त। ये जो कृष्ण संबंधे, कृष्ण की संबंध में कोई भी वो क्यों ना हो, क्यों भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो ये समझते हुए प्रापंचिकता बुद्धया, अरे ये तो भौतिक व्यक्ति है, इसको तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, ऐसा सोचना ये गलत है। भले ही कोई भौतिक वस्तु भी क्यों ना हो, भले ही कोई भौतिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, असुर भी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण के संबंध में है तो उनको उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, क्यों वो कृष्ण के संबंध में है। तो ये जितने भी असुर है वो सब असुर है, हम सोचेंगे इनका नाम ही नहीं लेना चाहिए प्रलंबासुर का, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रलंबासुर का नाम लेने से भी हमारा उद्दीकरण हृदय शुद्धिकरण होता है। क्यों? क्योंकि प्रलंबासुर का संबंध किससे है? कृष्ण से है। तो कृष्ण से संबंधित कोई भी व्यक्ति है उसका आप नाम लो तो शुद्धिकरण होता है, यू बिकम प्यूरिफाइड। तो ये कृष्ण का नाम का और कृष्ण की लीलाओं का पवित्रता है, इतना शक्तिशाली है कृष्ण का नाम और उनका उनके कार्य कि उनसे जुड़े हुए असुर भी उनका स्मरण करने से भी हमारा शुद्धिकरण होता है। ऐसे मान लीजिए हमने प्रलंबासुर का नाम लिया, नाम लेते तुरंत हमको पूरा प्रलंबासुर को कैसे कृष्ण वध किया उसका लीला का स्मरण हुआ कि नहीं, तो जैसे वो लीला का स्मरण हुआ तो हृदय के शुद्धिकरण होता है। जैसे हमने बकासुर का स्मरण किया, जैसे बकासुर का नाम लिया स्मरण किया और तुरंत कृष्ण का स्मरण होता है। तो इन असुरों का जो नाम है, भले ही असुर है, उनका किसके साथ है? कृष्ण के साथ में है। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलुपत्यते। जो मुक्ति मार्ग में है उनको वो उनका वैराग्य क्या रहता है, हम केवल कृष्ण को जानते हैं, हम केवल परब्रह्म को स्वीकार करेंगे और बाकी सब जो है वो तुच्छ है, माया है करके हम उनको बोलेंगे चरणामृत लीजिए, नहीं नहीं ये तो मीठा है, हम तपस्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, तो चरणामृत जो है बहुत सुगंधित मीठा चीज है, उससे हम दूर रहेंगे। तो चरणामृत क्या है? कृष्ण के संबंध में होने की वजह से हम क्या करेंगे उसको, हाँ स्वीकार करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि कृष्ण के संबंध में है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई डायबिटीज है किसी को, तो कोई कृष्ण का महाप्रसाद एक रसगुल्ला देता है, तो आप कहें नहीं मुझे डायबिटीज है मैं नहीं लूंगा, तो क्या सब बोले प्रभु जी ऐसे खाने जाएगा तो मर जाएंगे व्यक्ति डायबिटीज, तो क्या करना चाहिए उनको? कम से कम प्रणाम करना चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति डायबिटीज एक नंबर खा के देता है, प्रभु जी महाप्रसाद दीजिए रसगुल्ला दे रहा है, नहीं मुझे डायबिटीज है मैं नहीं लूंगा, तो क्या होगा? वो अपराध कर रहा है। क्यों अपराध कर रहा है? वो ये नहीं जानता कि ये रसगुल्ला का संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ है। परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? फिर कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? अगर गुल खाएंगे तो डायबिटीज पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो अपराध होगा। क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। तो इसी प्रकार ये जो भले ही असुर है, हम उनको अपने आचार्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसको निश्चित रूप में प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम मतलब उनको आदर देना चाहिए। क्यों आदर? इस तरीके से क्योंकि उनका नाम किससे जुड़ा है? कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। कृष्ण के साथ संबंध होने की वजह से सुखदेव गोस्वामी इन असुरों का नाम उच्चारण कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी के मुख से उत्पन्न हुआ हरेक शब्द भाग है, हरेक शब्द जो है वो मधुर है। जो ये जो असुरों का नाम संकीर्तन लेकर चल रहा है वो भी मधुर है। क्यों? क्योंकि ये सुनते ही भक्तों को मन में बड़ा प्रसन्नता होती है। क्या प्रसन्नता होती है? भविष्य में कृष्ण इन असुरों को इस प्रकार वध करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन असुरों का नाम संकीर्तन इसलिए हो रहा है, नाम संकीर्तन मतलब असुरों का जो नाम उनका उच्चारण इधर इसलिए हो रहा है कि ये असुरों का नाम, असुरों का अस्तित्व ही कृष्ण का प्राकृति का कारण है। तो आचार्यगण इस अध्याय को बहुत महत्व देते हैं। क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि इस अध्याय में कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। आगे आपको वर्णन में मालूम पड़ेगा कि कृष्ण का प्रकट सबसे पहला वसुदेव के मन में होता है, उसके बाद देवकी के हृदय में प्रकट होता है और सारे देवता लोग आते हैं। तभी प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कृष्ण क्यों प्रकट हुए? कृष्ण प्रकट हुए पिछले अध्याय में उसका पूरा भूमिका है, कृष्ण के प्राप्त की भूमिका क्या है? वो भूमिका परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का जो त्राण है, त्रास, जब वो दुखी होते हैं साधु, तो ये समझना चाहिए कि कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। फर्स्ट सिम्टम है कृष्ण का प्राकट्य होने का। सबसे पहला जो लक्षण क्या है, लक्षण है कि भक्त दुखी है। जब भक्तों का दुख होता है तब कृष्ण का प्राकट्य का संकेत है। तो इसलिए भक्तों का दुख जो है वो उससे हमको ज्यादा दुखी होने नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अगर भक्त बहुत दुखी है तो निश्चित रूप में कृष्ण आने वाला है, इज गोइंग टू कम। तो इधर पहला अध्याय में खाली इतना वर्णन किया गया है कि यदुवंश के राजा लोग कहाँ जन्म लिए, देवता लोग कहाँ जन्म लिए, यदुवंश में जन्म लिए। और संत ने क्या किया, इन यदुवंश की राजाओं को या यदुवंश को, उनके लोगों को बहुत दुख प्रदान किया। कैसे प्रदान किया उसका वर्णन ये अध्याय के शुरुआत में है। क्योंकि जब भगवान, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यदुवंश के जितने भी लोग हैं, देवता लोग हैं, आपके वंश के हैं, वो सब बहुत दुखी हैं, तो वो दुखी है, ठीक है, लेकिन कैसे दुखी है, किस प्रकार दुखी है, अगर वर्णन करोगे तुरंत भगवान जैसे मुझे दिल्ली आना होगा अभी, है कि नहीं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कैसे दुखी है, इन असुरों ने, सारे असुरों ने मिलकर किस प्रकार यदुवंशियों को पीड़ा पहुंचा है उसका वर्णन किया। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति को अगर हृदय पिघलना है या पिघालना है, अगर वो ये बोलेंगे ये व्यक्ति बहुत दुखी है, उससे हृदय नहीं पिघलता, उस दुख का वर्णन करना होगा, कैसे दुखी है उसके दुख का विवरण करना होगा। हाँ, तुरंत ऐसा है क्या, चलो मैं जाके करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है तो हॉस्पिटल में आया, तो नर्स ने फोन किया, तो डॉक्टर साहब ये पेशेंट जो है बहुत बीमार है। डॉक्टर बोलेंगे ठीक है ठीक है, पेशेंट बोलेंगे नहीं नहीं इसको 104 डिग्री है और बेहोश है, पूरा वर्णन करने लग जाएगी, तो आप डॉक्टर बोले तुरंत आऊंगा, ठीक है। तो यानी दुख का जो वर्णन किया जाता है तो व्यक्ति जो है जिस जो रक्षा करने वाला वो तुरंत भाग के आता है कि नहीं। तो कृष्ण तो ऐसे थे, ठीक है दुखी है मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी लीलाओं को खत्म करके आऊंगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ये यदुवंश के जो लोग हैं वो कितने दुखी है, किस प्रकार दुखी है, और उसके ऊपर सारे असुर एकत्रित होकर उनके ऊपर प्रहार करने आ रहे हैं, ये बात सुन के कृष्ण क्या किया, उनके अंदर जल्दी हुआ, नहीं नहीं मुझे जल्दी जाना है। तो कैसे मालूम है कृष्ण बहुत जल्दी जल्दी आने का प्रयास कर रहे हैं ये दुख सुन के, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया, किसको आदेश दिया, योग माया को आदेश दिया, हाँ योग माया जल्दी आओ, ताकि ये बलराम को जब चटा दो, ही मुझे जल्दी जाना है। बलराम जी अभी कहाँ है, देवकी के गर्भ में है, अभी उनको जल्दी से जल्दी निकालो उधर से, मुझे जाना है, क्योंकि ज्यादा देर बलराम जी तो संकर्षण है, अनंत देश से वो सोते रहेंगे और मेरे आने देर हो जाएगा, इतना देर तक तब तक यदुवंशी सब खत्म कर देंगे सर। तो भगवान के अंदर आतुरता हुई, मुझे जल्दी जाना है। तो ये आतुरता जो है ये जो दो या तीन पहले के तीन श्लोकों का सार है। पहले तीन श्लोकों को सुखदेव गोस्वामी ने केवल इसी के लिए वर्णन किया था कि भगवान के अंदर ऐसी आतुरता प्रकट हो ताकि मैं सबसे जल्दी से जल्दी आके देवकी के गर्भ में मैं प्रकट हो जाऊं। तो इसलिए प्रभुपाद जी वो श्लोक को कोट करते हैं जहां गर्भम संसार्य रोहिण्याम देवकी योगमाया तस्य कुक्षीम कृष्णो द्वितीयो विभुधि सुताः। The Krishna appeared in the womb of Deviki of transferring Baldev to the womb of Rohini by the power of Yogamaya. So, Yogamaya ke bal se unhone kya kiya? Wo Rohini ke garbh se, Deviki ke garbh se Rohini ke garbh mein unhone change kiya. Isliye Sukadev Goswami ka, Parikshit Maharaj ka pehla prashn yehi tha ki Krishna katha ka shravan karne ki jo ichcha ko vyakt kiya unhone pehle adhyay mein, unhone sabse pehla prashn yehi pucha Balram ji ke vishay mein. रोहिणी तरह प्रोक्त नाम संकर्षण देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना। उनका पहला प्रश्न यह था कृष्ण कथा में बलराम जी के विषय में, उनका प्रश्न यह था किस प्रकार योग माया ने बलराम जी को ट्रांसफर किया। तो किस प्रकार ट्रांसफर किया उसका वर्णन आगे आता है, लेकिन क्यों ट्रांसफर हुआ, वाई इट वॉज ट्रांसफर्ड, रोहिणी तनय प्रोक्त राम संकृष्ण स्वया देवक्या गर्भ संबंध है, देव की गर्भ में होने पर भी उनको रोहिणी तनय क्यों पुकारा जाता है। ये बलराम जी का ये जो लीला के पीछे जो वास्तविक कारण है वो कारण क्या है, कृष्ण की आत्मा, कृष्ण हैज टू कम, ही वांट्स टू कम इमीडिएटली। तो ये विचार है। तो प्रभुपाद जी भगवदगीता के दो श्लोक कोट करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये दो दो चीजें हैं, धर्म विनाशाय दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम, दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, दो अलग वस्तु नहीं है। क्योंकि ये जो परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का जो त्रास है वो कौन पहुंचाता है, असुर लोग पहुंचाते हैं। तो ये साधुओं का जो त्रास है या त्राण करने के लिए असुरों का नाश करना होगा। तो इसलिए भले ही ये दो कारण दिखाई देते हैं, एक कारण है भगवान की प्राकृति का, क्या कारण है, भक्तों का संरक्षण करना, दूसरा कारण क्या है वो असुरों का नाश करना, तीसरा कारण क्या है श्लोक में, धर्म की स्थापना करना। भले ये तीनों तीन चीज के रूप में दिखाई पड़ रहा है लेकिन तीनों में संबंध है, तीनों एक्चुअली एक ही हैं। वो कैसे एक ही है, भक्तों का संरक्षण होता है असुरों का नाश के द्वारा, और जब ये होता है स्वाभाविक तरीके से भक्त बच जाते हैं तो धर्म की स्थापना अपने आप हो जाता है। लेकिन भले ही ये तीनों एक ही है, तीन करके तीन शब्दों में क्यों वर्णन किया गया है, क्योंकि इसलिए वर्णन किया गया है भले ही ये तीन एक ही हैं, ये तीन रूप में इसलिए वर्णन किया गया है क्योंकि कृष्ण के हृदय में क्या चीज है उसको व्यक्त करने के लिए भगवान श्लोक में ये तीन शब्दों को आप इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। इसलिए आचार्यगण कहते हैं या चीजें तीनों में तीनों एक ही है, तीनों एक साथ में है, इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री। भले ही तीनों में कोई अंतर नहीं लेकिन फिर भी तीन शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, तीन कारण क्यों बताया गया है, खाली ये सूचित करने के लिए भक्त वत्सलता का, भगवान का जो भक्त वत्सलता है उसको प्रकाशित करने के लिए एक ही बात को तीन शब्द वर्णन किया गया है। भगवान असुरों को जो वध करना होगा तो स्वयं आने की कोई जरूरत नहीं है, ही डजंट हैव टू कम पर्सनली, कोई शक्तिशाली व्यक्ति को भेज देते हैं, या स्वयं भगवान सबके हृदय में असुरों के हृदय में भी परमात्मा के रूप में है, वो परमात्मा अंदर ही बैठे तो उधर ही मार सकते, खत्म उधर ही खत्म कर सकते थे, उनको कुछ अलग बाहर आके कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ही डजंट हैव टू डू। लेकिन भगवान के प्राकृति के पीछे वास्तविक कारण क्या है, इन तीनों में परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का संरक्षण। तो भले ही ये तीनों का एकत्व है, ये तीन रूप में इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि भगवान के जो हृदय की जो भावना को व्यक्त करने के लिए कि मैं भक्त वत्सल हूँ, आई एम प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटी, किलर ऑफ डेमन्स, इतना साइड इफेक्ट है, वो साइड रीजन है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है, लेकिन भक्तों का जो परित्राण है उनको त्रास है वो हो रहा है, उसको मैं उससे मुक्त कराना चाहता हूँ, ये भाव से श्लोक को उनको समझना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन? हाँ हाँ, जन्म को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया रोहिणी माता के गर्भ में ताकि मैं देव की गर्भ प्रकट हो जाऊँ। अगर मान लीजिए बलराम जी का जो देवकी के गर्भ में ही रहते हैं तो कृष्ण का प्राकट्य उनके बाद ही होता, तो वो जो 9 महीना जो भी 10 महीना जो है वो टाइम बचाने के लिए कृष्ण पहले से प्रकट हो गए। That is the reason. Because in Sukadeva Goswami, it's all the description. So it says, Asur bhaktos ko kis prakar dukh pahuncha rahe, uska varnan sunne se हृदय पिघल जाता है, उस वजह से ईवी के मेरी हेल्थ। श्रीपाल वल्लभ आचार्य एक्सप्लेन दिस पॉइंट, है ना, वल्लभ श्रीपाल वल्लभ आचार्य। और कुछ? हाँ बलराम जी, हाँ कृष्ण काला क्यों? कृष्ण काले वो एक भजन है ना हिंदी में, सात कारण है जो भी है, लेकिन काले गाय दूध। लेकिन मैं गौर पूर्णिमा के दिन में उसका बताया था, उसको याद है। हाँ भोक्ता हम, कृष्ण क्या कहते हैं, मैं भोक्ता हूँ, आई एम द एंजॉयर, एंजॉयर मैं भोक्ता हूँ। भोक्ता का स्वाभाविक रंग है काला, और राजरानी क्या है, व्हाट इज हर क्वालिटी, कंपैशन। दया का जो स्वाभाविक रंग क्या है, हाँ तो हमारा जो शरीर का रंग जो है, शरीर की रंग नहीं कांति है, रंग नहीं बोला जाता है, तो शरीर का जो कांति है वो हमारे भाव के ऊपर आधारित है। जैसे कोई क्रोध में है, उसका स्वाभाविक रंग क्या है, क्रोध का लाल, बोलते हैं लाल हो गया एकदम क्रोध में, तो वैसे कृष्ण का जो रंग जो है वो घना है, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन। तो ये क्यों है, क्योंकि भगवान से कहते हैं मैं भोगता हूं। वही भगवान जब दया की भावना को उच्चार करते हैं तो क्या होता है, तो वो गौरंग हो जाते हैं। अरे बलराम क्यों गोरे हैं, है कि नहीं, बलराम का जो गोरापन है, बलराम का जो निजी भाव है, प्रभुपाद जी कहते हैं सेवक, सेवा सेवा, तो बलराम जी का सेवा की भावना इतना है, इतना है कि भगवान को कृष्ण को वो पांचों के पांच रस में सेवा करते हैं। जैसे कोई जीव है, कोई व्यक्ति है, तो वो एक ही रस में भगवान की सेवा कर सकता है, किसी का भी, जगत में भी। माँ है तो वात्सल्य दिखा सकती है कि नहीं, दासत्व जो है वो सब नहीं रहता है, लेकिन बलराम जी जो है शांत दास साख की वात्सल्य माधुर्य, ये पांचों के पांच रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो सेवा की जो भावना है वो उसका स्वाभाविक रंग गोरा होगा, मैं कितना नहीं, मैं ऐसा इन्फर कर सकता हूं। हाँ हाँ बलराम जी तो एक पुरुष के रूप में, माधुरी रूप में, बलराम जी विस्तार करते अपने आप को अनंग मंजरी के रूप में, अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। राधा कुंड में, कंकन कुंड में अनंग मंजरी का कुंज है, बहुत कृष्ण राधा कृष्ण के जो सर्वोत्तम जो लीलाएं, जो गुह्य से गुह्यतम लीला है, जहाँ ललिता विशाखा भी नहीं रहती है, उस जगह आनंद की मंजरी रहती है। और कुछ स्वानंद सुखदा कुछ है नहीं, तो उस लीला में भाग लेती है मंजरी, आश्रम रंत्रार्थ भागवतम की सेवा उपाध की चाय।